आप सभी को राधे राधे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज मन में विचार उठा कि भगवत गीता के साथ साथ भारत की जितनी भी महान देवियां हुई हैं, उनकी महानता पर, उनकी जीवन गाथा पर वीडियोस की एक श्रृंखला तैयार करूं और आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। तो आज पहला वीडियो मैं जिस देवी पर बनाने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी नारी है जिनकी महानता का वर्णन करने के लिए अंबर भी छोटा पड़ जाए। वे एक ऐसी विलक्षण देवी हैं जिन्होंने यमराज को भी अपने सामने झुका दिया। एक ऐसी विभूति जो यमराज को देखकर भी भयभीत तो नहीं हुई, बल्कि यमराज के चंगुल से अपने मृत पति को वापिस लौटा के ले आई। एक ऐसी नारी जिन्होंने अपने पिता को धर्म का पाठ पढ़ा दिया। एक ऐसी देवी जिन्होंने नारद जी को भी निरुत्तर कर दिया। हम बात कर रहे हैं माता सावित्री की। तो महाभारत के वन पर्व के 293 से 299 तक ये जो 7 अध्याय हैं, इन्हीं 7 अध्यायों में माता सावित्री की कथा मिलती है। ये युधिष्ठिर जी और मार्कंडेय जी का संवाद है। युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी को कह रहे थे कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के कारण हमें बहुत दुख झेलना पड़ा, लेकिन द्रौपदी ने किसी तरह हमें बचा लिया। इसीलिए मैं अपने लिए और अपने भाइयों के लिए उतना दुखी नहीं हूं, उतना व्यथित नहीं हूं, जितना द्रौपदी के लिए हूं। जयद्रथ भी द्रौपदी का हरण करके ले गया था। तो युधिष्ठिर जी मार्कंडेय जी से पूछते कि क्या आपने द्रौपदी से पहले किसी ऐसी पतिव्रता के बारे में सुना है जो इतना कष्ट सहकर भी अपने पातिव्रत्य धर्म का पूर्णतः पालन करे, जिसने हर संकट से अपने पतियों को बचाया हो। तो उत्तर में मार्कंडेय जी माता सावित्री की कथा युधिष्ठिर जी को सुनाते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, मध्य देश के एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। वे ब्राह्मण भक्त, विशाल हृदय, जितेंद्रिय और सत्य प्रतिज्ञ थे। यज्ञ करते थे, दान करते थे और बड़ी अच्छी तरह से अपनी प्रजा का संचालन कर रहे थे। सत्यवादी, क्षमाशील होने पर भी इनके कोई संतान नहीं थी। बहुत आयु बीत जाने पर भी इनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए कठोर नियमों का आश्रय लिया। ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन 1,00,000 गायत्री की आहुति देकर दिन के 6ठे भाग में थोड़ा सा भोजन किया करते थे और 18 वर्षों तक इन्होंने इस कठोर नियम का पालन किया। तो देवी सावित्री इन पर प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र की अग्नि में प्रकट होकर मां सावित्री देवी ने इनको दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तो राजा अश्वपति ने कहा कि मुझे संतान चाहिए, मैं संतान प्राप्ति के लिए ही यज्ञ कर रहा था। तो माता सावित्री ने प्रसन्न होकर कहा, राजन आपको एक कन्या की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर मां सावित्री अंतर्धान हो गई। राजा अश्वपति प्रसन्न हो गए, अपने नगर को वापिस लौट गए और वहां पुनः अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। एक दिन शुभ समाचार आ गया कि जो इनकी पत्नी है, जिनका नाम मालवी था, वे मालव देश की राजकुमारी थी, वे गर्भवती हो गई थी। समय होने पर महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया। क्योंकि वह कन्या माता सावित्री के आशीर्वाद से जन्मी थी, तो इसीलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री रखा। जल्दी ही उस कन्या ने युवावस्था में प्रवेश कर लिया और वो बड़ी सुंदर कन्या थी। लोगों को लगता था कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि देव कन्या ही है। उसके नेत्र नील कमल दल के समान थे और वह अपने तेज से प्रज्वलित सी जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी राजकुमार उसका वरण नहीं कर सका। एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को कहा कि अब तुम्हारे विवाह का समय आ चुका है, लेकिन कोई राजकुमार तुम्हारा वरण नहीं कर पाया है। तुम मेरी आज्ञा से विभिन्न देशों की यात्रा करो और जो राजकुमार तुम्हें गुणों में अपनी तरह दिखे उसका परिचय मुझे दो और मैं सब कुछ देखकर तुम्हारा विवाह उससे कर दूंगा। राजा अश्वपति कहते कि विवाह के योग्य हो जाने पर भी यदि पिता कन्या का विवाह नहीं करता तो वह निंदनीय होता है। इसीलिए हे सावित्री, तू मुझे देवताओं की दृष्टि में अपराधी मत बनाओ और तुम जाओ और अपने लिए किसी श्रेष्ठ पति को ढूंढो। और राजा ने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि आप लोग श्रेष्ठ सामग्री लेकर सावित्री के साथ ही जाओ। सावित्री ने पिता को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर वह वहां से चली गई। सुवर्णमय रथ पर सवार होकर बूढ़े मंत्रियों से गिरी वह कन्या तपोवनों में गई, अनेक तीर्थों में जाकर ब्राह्मणों को दान दिया और विभिन्न देशों में घूमती रही। एक दिन राजा अश्वपति अपने महल में बैठे हुए थे तो इनके पास नारद जी आए और नारद जी और राजा अश्वपति आपस में बातचीत करने लगे कि तभी वहां पर सावित्री भी आ गई और सावित्री ने अपने पिता और नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने सावित्री को देखा तो अश्वपति से बोले कि आपकी बेटी तो विवाह के योग्य हो गई है, कोई अच्छा वर ढूंढ कर इसका विवाह कर दीजिए। तो राजा अश्वपति ने कहा कि मैंने उसी कार्य के लिए सावित्री को भेजा था, तो अब यह यात्रा करके आई है, अब यही बताएगी कि इसने अपने लिए किस पुरुष का चुनाव किया है। तो अश्वपति ने सावित्री से कहा कि अपनी पूरी यात्रा का वृतांत सुनाओ, नारद जी को सुनाओ कि तुमने कौन से पुरुष को पति रूप में चुना है। तो सावित्री ने कहा कि शालव देश में द्युमत्सेन नाम के एक प्रसिद्ध बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन एक समय आने पर वे अंधे हो गए थे, उनकी आंखें चली गई थी। तो इस अवसर का लाभ उठाकर पड़ोसी राज्य के उनके जो शत्रु राजा थे उन्होंने उन पर आक्रमण कर दिया और उनका सारा राज्य हड़प लिया। अब जो राजा का पुत्र था वो अभी छोटा ही था, तो राजा अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर वन में चले गए और वहीं पर तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र हैं सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए थे पर उनका पालन पोषण वन में हुआ, वही मेरे पति के योग्य हैं, मैंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है। तो नारद जी कहते कि ये तो सावित्री ने बिना जाने ही अपना अनिष्ट कर लिया, क्योंकि इसने सत्यवान को गुणवान जानकर उसका वरण कर लिया। इनके जो पिता हैं वे सदा सत्य ही बोलते हैं और इनकी माता भी सदा सत्य बोलती है, इसीलिए ब्राह्मणों ने नाम सत्यवान रख दिया। और ये जो सत्यवान है ये इनको घोड़ों से बहुत प्रेम है, अश्वों से बहुत प्रेम है, मिट्टी के अश्व बनाते रहते थे और जब चित्र बनाते थे तो उसमें भी घोड़ों के चित्र बना देते थे, इसीलिए इनका एक नाम चित्राश्व भी है। तो अश्वपति ने नारद जी से प्रश्न किया कि ये जो सत्यवान है ये तेजस्वी बुद्धिमान क्षमावान और शूरवीर तो है ना। तो नारद जी कहते सूर्य के समान तेजस्वी है, बृहस्पति के समान बुद्धिमान है, इंद्र के समान शूरवीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। तो अश्वपति पूछते कि क्या सत्यवान धानी ब्राह्मण भक्त रूपवान उदार और दिखने में सुंदर भी है, दर्शन प्रिय भी है। तो नारद जी कहते कि सत्यवान तो दान करने में संकृति नंदन रंती देव के समान है और उसी नर के पुत्र शिबी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है, ययाति की तरह उदार है और चंद्रमा की तरह प्रिय दर्शन है और रूपवान तो इतना कि मानो अश्विनी कुमारों में से ही कोई एक हो। नारद जी कहते कि वह जितेंद्रिय मृदुल सबसे मित्रता रखने वाला कांतिमान है। तो अश्वपति नारद जी से पूछते कि भगवान आप तो उसे सब गुणों से संपन्न ही बता रहे हैं, क्या उसमें कोई दोष नहीं है, केवल गुण ही गुण है। तो नारद जी कहते उसका केवल एक ही दोष है कि वह आज से ठीक एक वर्ष बीत जाने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसकी आयु पूरी हो जाएगी। अब सत्यवान चाहे कितना भी गुणवान क्यों ना हो, लेकिन जब उसकी आयु में केवल एक ही वर्ष शेष बचा है, एक वर्ष से अधिक उसके पास आयु है ही नहीं, तो फिर कोई भी पिता अपनी पुत्री की शादी ऐसे व्यक्ति से कैसे करवाएगा। तो राजा अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि बेटी तू पुनः यात्रा कर, अपने लिए कोई और वर ढूंढ ले, क्योंकि कोई पिता नहीं चाहता कि उसकी बेटी विवाह के एक वर्ष के बाद ही विधवा हो जाए। यदि पहले ही पता है कि व्यक्ति के पास आयु केवल एक ही वर्ष शेष बची है तो कौन पिता अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ करवा देगा। लेकिन सावित्री भी सावित्री थी, सावित्री ने अपने पिता को ऐसा क्या कहा कि राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करवा दिया, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।